على الفرق.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کی چوتھی نشست اور نجف کی زیارات کے حوالے سے دوسری نشست پیش خدمت ہے. اس سے پہلے کی نشست میں جو آخری بات ہم نے کی تھی جہاں پہ سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا وہ تھا آثار حرم امیر المومنین. یعنی آپ حرم میں داخل ہو گئے اور مولا کی زیارت پڑھ لی, آدم و نوح علیہ السلام کی بھی زیارت سے فارغ ہو گئے. اب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, ایک سرور اور ایک وجد کی کیفیت جو آپ پہ طاری تھی اس میں کمی آتی ہے, اور اس کے بعد آپ آس پاس دیکھتے ہیں کہ میرے آس پاس کیا ہے. اب تک جو ہیولا, اب تک جو کانسیپٹ آپ کے ذہن میں تھا فقط مولا کی ذات مقدسہ تھی, اور بے شک نجف میں مولا کی مرکت اور زری بالکل ایسی ہے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ. چنانچہ آدمی کا, مومن کا سب سے پہلا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے مولا کو سلام کر لوں, اس کے بعد مولا کے ساتھ جو مدفون دو اہم معصوم شخصیات ہیں, انبیاء ہیں, حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام, یہ دو افراد. اس کے بعد جو دیگر زیارات ہیں اسی حرم مطہر میں, اس کی زیارت کرنی ہے آپ کو. اور یہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ فقط آئمہ معصومین ہی نہیں بلکہ ان کو متعارف کروانے والے لوگ یا وہ لوگ جو کسی نسبت سے مولا یا اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہماری جسے کہتے ہیں کہ حرارت ایمانی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. چنانچہ ہمیں مولا اور دو انبیاء کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد آس پاس نظر دوڑا کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہ اب تک کی جو زیارت تھی وہ ایک سیشن میں کر لیں, اور اس کے بعد حرم سے واپس ہوٹل چلے جائیں, وہاں پہ ریسٹ کر لیں, پھر دوبارہ آئیں, دوسرے دن کے لیے رکھ لیں, یا پھر حرم میں ہی تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر دوبارہ دوسری زیارت شروع کریں. ابھی جو آپ نے زیارت کی وہ مولا کی, اور مولا کے ساتھ ان کی پائنتی کی طرف جو دو انبیاء دفن ہیں ان کی زیارت کی. یعنی یہ زیارت آپ کو ایک گو میں کرنی ہے, اس کے بعد آپ پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے اطراف کیا کیا چیزیں ہیں. یہ نقشہ آپ کو رٹنا ہے, یاد کرنا ہے, ازبر کرنا ہے. مجموعی طور پہ اس میں 15 اسپاٹس ہیں, 15 چیزیں ہیں جو کہ ہر صورت میں آپ کو دیکھنی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ چیزیں ہوں گی, وہ آپ کو ہم دکھائیں گے, بتلائیں گے. اور مائکرو لیول پہ بھی زیارت کرنی ہے, میکرو لیول پہ بھی زیارت کرنی ہے. مائکرو لیول یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دقت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اور انشاءاللہ جب ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مولا کے حرم میں اور ان کے آس پاس ہر ذرہ جو ہے وہ ایک دنیا لیے ہوئے ہے, اور چشم معرفت ہو تو انسان بہت کچھ لے کر پلٹتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مولا کی مرکت کے آس پاس نگاہ دوڑائیں, چند نقطے, دو باتیں مقدماتی طور پر یہاں پہ عرض کر دیں کہ جس طرح مولا کی ذات معجزات و کرامات اور اسرار الہی سے پر ہے, उसी तरह खुद नजफ अशरफ और हरम मुतहर मोमिनीन रुसरारियत करामत मोजज़ात और रूहानियत से पुर है। और हकीकत है मौला तो वो हैं कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं उसको सोना बना दे। तो नजफ क्या और नजफ का एतराफ क्या, तो नजफ के बारे में जैसे कि हमने बतलाया था इसके 14 से ज़्यादा नाम, अभी मज़ीद हमने तहकीक की तो पता चला कि 28 से ज़्यादा नाम। और ये चाह रहा है कि जो कुछ आपको बताया फिर दोबारा से बताएं, क्योंकि नई नई किताबें नई नई वेबसाइट्स मालूम चल रही हैं इस तहकीक में। फ़कत किताबों की किताबें लिखी गई हैं, फ़कत हरम मुतहर अमीरुल मोमिनीन एक एक किताब जो है वो लिखी गई है फ़कत हरम मुतहर। तो आपको बताया गया था कि एक नाम नजफ का है पुश्त कूफा या जहर कूफा, उसका जहर उसका बैरूनी हिस्सा। तो अगर हम पुश्त कूफा को पुश्ता कह दें तो भी काफ़ी है। पुश्ता अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका ट्रांसलेशन होगा डैम। जिस तरह हमारे यहाँ डैम बनते हैं तरबिला डैम, मंगला डैम, कालाबाग डैम वगैरह जो भी, तो डैम का फेल फंक्शन क्या होता है, अफादियत क्या है, वो तो पानी को रोकता है, पानी के रेले को, पानी के सैलाब को रोकता है ताकि ये पानी आगे चलकर तबाही का सबब ना बने। तो ये आपको सुन के हैरत होगी कि नजफ अशरफ जैसे हमने बताया सतह मुर्तफा से बुलंद है, मुस्ततील है, और लोग वहाँ के जो रिहायशी मकीन हैं वो बतलाते हैं कि ये इस तरह बुलंदी पर वाक़ है कि अगर कभी बारिश तूफ़ान या सैलाबी रेला आए तो ये उस सैलाबी रेले को अपनी बुलंदी की वजह से रोकता है और कूफे में दाखिल होने नहीं देता। तो कूफा अब तक जो सैलाब से तूफ़ान से पानी के रेले से बचा हुआ है ये नजफ अशरफ की बरकत है। जिस तरह मौला अपने चाहने वालों की हिफाजत किया करते थे, नजफ भी कूफे की हिफाजत कर रहा है। और आपको मालूम है कूफे की हिफाजत अहम तरीन इकदाम में से एक है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना मस्कन बनाएगा, यहाँ पे वो अपना दारुल खिलाफा बनाएगा कि जो हमें बचाएगा। तो मौला नजफ में हो कि कूफे को बचा रहे और कूफे वाला गैब पर्दे गैबत में रहकर हमको बचा रहे। फिर खुद हरम के असरार इलाही बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मौजज़ात और करामात यहाँ पे जाहिर हुई हैं। और मौला ने अपने करीम होने का सबूत दिया, अपने सफ़ी होने का सबूत दिया, तासुब भरा अंदाज नहीं अपनाया कि फ़कत अपने चाहने वालों को नवाजा, उन लोगों को भी नवाजा जो मौला को नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी की बिना पर आ गए। हम अकीदा नहीं थे, मौला को जो है वो अपना वली नहीं मानते थे लेकिन फिर भी मौला ने दिया। रूहानियत मुजज़ात करामात इंशाल्लाह तस्किरा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वाज़े होते चले जाएंगे। फ़कत मादी मालियत के हवाले से एक बात अर्ज करते चलें, क्योंकि मादियत परस्ती की दुनिया है। डॉक्टर सलाह मेहदी अलफरतूसी अपनी किताब माकद मुताहर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में फरमाते हैं कि जो लोग हरम मुतहर के मुतवल्ली हैं, निगरान हैं, मुंतजमीन में से हैं, और जिन लोगों को हरम मुतहर में मौजूद जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं और मदफून जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जिन लोगों को इन तमाम अशिया का अंदाज़ा है, उनमें से एक फ़र्द ने मुझे कहा, ये अलफरतूसी साहब ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि इत्तेफाक से उर्दू में भी अवेलेबल है, चाहें तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, है अरबी में तर्जुमा हो चुका है, मोहम्मद तकी साहब ने इसका उर्दू तर्जुमा किया है। तो वो कहते हैं कि इन मदफून खजानों को जानने वालों में से एक जानने वाला एक मुतवल्ली से मेरी बात हुई, तो मुतवल्ली कहता है कि आपको मालूम है कि इराक में और इससे पहले अरब इलाकों में सरदाब हुआ करते थे, सरदाब में मैयतें दफन होती थी। तो मौला अली की जो जरी है उसके नीचे कब्र है, यानी सरदाब में कब्र है, वहाँ पे चार गोदाम हैं, बड़े बड़े कमरे, और उन गोदामों में नवादरात हैं, एंटीक्स। वो एंटीक्स आइमा मुताहिरीन के हवाले से भी हैं, वो एंटीक्स बादशाहों के हवाले से भी हैं, वो एंटीक्स कुछ वाक़यात के हवाले से भी हैं। तो वो शख्स कहता है कि अगर चार गोदामों में से फ़कत जुनूब का गोदाम, उसके नवादरात में से एक नादिर चीज़ का एक टुकड़ा बेच दिया जाए तो उससे इतनी कीमत मिलेगी कि नजफ से लेके करबला तक एक ऐसी शाहरा तैयार हो सकती है कि जिसके फुटपाथ टाइलों से बने हुए हों और जिसके दोनों अतराफ दरख्त लगे हुए हों और उन दरख्त को सैराब करने के लिए जा बजा फवारे। मादनी हवाले से फकत चार गोदामों में से एक गोदाम का एक नादिर नमूने का एक टुकड़ा अगर बेच दिया जाए, चाहने वाले बहुत हैं और वाकई उसकी अहमियत बहुत है, तो वो टुकड़ा बेच दिया, अगर तमाम नवादरात बेच दिए जाएं तो पूरा इराक़ काम पहुँच जाए, हमें तेल की और गैस की और दीगर चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। इंशाल्लाह भी तस्करा आगे आएगा कि जो सहन फातिमा बनने जा रहा है वहाँ पर ये नवादरात रखे जाएंगे, और ये नवादरात इतने ज़्यादा हैं कि बाकायदा चार मंजिला बिल्डिंग तामीर हो रही है इस वक्त, कि जो इन नवादरात को अपने अंदर जो है वो जज्ब करेगी, और इंशाल्लाह ज़ायरीन फिर उसकी भी जो अभी तक छुपे हैं, कहते हैं कि सदियां गुजर गई हैं, फ़कत दो या तीन मरतबा ये संदूक खुले, दो या तीन मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं खुले, इजाज़त नहीं है, बहुत सख्ती है। और ये जो लोग हमले करते हैं नासबी, और जैसे जिसे कहते हैं उस ज़माने में हमने आपको बताया था अब्दुलवाहाब की सरकर्दगी में, वो हमले फ़कत इसलिए नहीं होते, दुश्मनी में लालच में भी होते हैं, ताकि यहाँ पे मौजूद सोना नवादरात और एंटीक जो है उनको चुराया जाए, उनको लेके जाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और इस सबब बहुत सारे मौजूदात करामात भी रूनुमा हुई, उसका भी इंशाल्लाह तस्करा भी आगे आएगा। तो मौला की ज़ात दीन भी देती है, दुनिया भी देती है, मौला की ज़ात अपने वालों को भी देती है और गैरों को भी नवाजती है। जब हमने पिछली मरतबा तस्करा किया था कि मौला की ज्यारत के हवाले से कि जब आप जाएं तो वहाँ ज्यारत करें, काफ़िले वाले अमूमन मुख्तलिफ डेट्स अनाउंस करते हैं, तो अगर आप किसी मखसूस डेट में जाएं तो बहुत ही अच्छा है, वरना तो बहरहाल जो भी आपको फुर्सत मिले, जहाँ भी आपको मौका मिले आप चले जाएँ, लेकिन अगर ये डेट्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आप जो है वो 13 रजब की अगर हम डेट्स ले लें तो 13 रजब की डेट है, 27 रजब की है, 13 रजब विलादत है, 27 जो है वो बेसत है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बेसत का मतलब है रसूलुल्लाह मबूस हुए, तो उसका क्या ताल्लुक अली से, तो अना व अली नूर मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर से हैं, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो जो वाकया जो मौका रसूलुल्लाह से मंसूब होगा, उनके खुशनूदी के हवाले से अहम होगा, वो वाकया और वो जगह जो है खुद मौला अली के हवाले से इम्पोर्टेंट होगी। फिर 17 रमज़ान, 20 रमज़ान, 21 रमज़ान, फतेह जंग बदर या यौम बुत शकनी, जब जो है वो मौला ने काबे में जो है वो रसूलुल्लाह के दोश मुबारक पे चढ़ के बुतों को तोड़ा। अच्छा, 27 रजब को सिर्फ मजबूस नहीं हुए थे रसूलुल्लाह, इस दिन जो है फतेह खैबर भी हुई थी। फिर 17 शवाल रोज़े मवासात जंगे उहद, यानी जंगे उहद में रसूलुल्लाह जब दुश्मनों में गिर गए तो या अली मदद कह के अली को पुकारा था, तो वो दिन भी बहरहाल इम्पोर्टेंट है। और यही दिन इत्तेफाक से रद्द शम्स भी है, वो अली जो मैदान जंग में दुश्मनों को भगा सकता है, वो अली सूरज को भी पलटा सकता है। फिर पहली ज़िलहज रोज़े मामूरियत आयात बरात मुशरिकीन, सूरह बरात जो मौला अली गए थे, पहले कोई और गया था, फिर उसको वापस बुलवा के अल्लाह ने मौला अली को भेजा। फिर 9 ज़िलहज दर खाना अली का हुक्म, यानी तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और जो है अली کا دروازہ علی کے گھر کا دروازہ بدستور کھلے رہنے کا حکم دیا تھا, جو کہ پہلے مسجد نبوی میں باقی دروازے کھلتے تھے. یہ روزہ عرفہ بھی ہے. عموماً لوگ جو عمومی اہمیت ہے اس کو تو یاد رکھتے ہیں, جو خصوصی مناسبت اہل بیت کے حوالے سے عموماً وہ حذف کر دی جاتی ہے یا کسی سازش کے تحت لوگوں سے چھپا دی جاتی ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ نسبتیں بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے جو عمومی کے علاوہ اہل بیت سے خصوصی طور پر منسوب ہے. پھر 9 ذی الحج یوم عرفہ دار خانہ, 18 ذی الحج یوم غدیر خم یقیناً ایک اہم ڈیٹ ہے, 24 ذی الحج روز مباحلہ, اور یہ وہی دن کی آیت ولایت نازل ہوئی اور مولا نے جو ہے اپنی انگوٹھی دی, 25 ذی الحج سورہ حلتا, جب تین دنوں میں اہل بیت نے جو ہے وہ روزے رکھے اپنی روٹی کو سائلوں کو دیا مانگنے والوں کو, ازدواج فاطمہ بھی اسی دن ہوا, بیت خلافت مولا علی بھی اسی دن ہوئی, پہلی ربیع اول شب ہجرت کے جو شب نیند قرار پائی کہ جس دن مولا علی کو بہت سکون کی نیند آئی, ورنہ ان کی تمام راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرتی تھی, 17 ربیع الاول روز ولادت رسول اللہ, اور 15 جماعت الاول فتح بصرہ. تو اگر یہ ڈیٹس اگر آپ کو مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہے, آپ ان ڈیٹس میں جائیں اور اس مناسبت سے مولا علی کے کارنامے, مولا علی کے معجزات اور کرامات یاد رکھیں, ورنہ جو ڈیٹ آپ کو مل جاتی ہے آپ بسم اللہ کریں اور کوئی موقع جو ہے وہ نہ چھوڑیں. جب آپ زیارات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ, اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, مفاتی اس حوالے سے بہت کام کی کتابیں, اور ماشاء اللہ شیخ عباس قمی نے مفاتی کو جس انداز سے لکھا ہے, جس تقدس سے لکھا ہے, وہ یقیناً جو ہے قابل تحسین ہے. تو مفاتی تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, ایک حصہ جو ہے وہ یومیہ عبادات کے حوالے سے, اعمال کے حوالے سے, اور دوسرا حصہ ماہانہ اعمال کے حوالے سے, ماہ محرم ماہ رمضان وغیرہ کے اعمال. تیسرا حصہ زیارات سے متعلق ہے جو عموماً ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ تعقیبات پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے ماہانہ طور پہ جو ہے وہ اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن زیارات کو بھول جاتے ہیں. تو تھرڈ یعنی ون تھرڈ آف آپ کی مفاتی جو ہے وہ زیارات پر مشتمل ہے, تو اس کو پڑھیے. خصوصی طور پہ جب آپ زیارات پہ جائیں تو ضرور پڑھیے. زیارات پہ نہیں بھی جا رہے تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ نہ بھی جاؤ تو چھت پہ جا کے دائیں بائیں دیکھو اور مولا کی یا سید الشہدا کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے اپنی زیارت پڑھ ڈالو, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی زیارت قبول ہو جائے گی. تو زیارات جو مولا کی منقول اور مذکور ہیں کتابوں میں, وہ دو قسم کی ہیں, مطلقہ اور مخصوصہ. مطلقہ یعنی وہ زیارات جو کسی خاص دن سے مخصوص نہیں ہیں, آپ جب چاہیں پڑھ لیں, جس دن آپ پہنچیں وہ زیارات پڑھ لیں, گھر میں بیٹھ کے وہ زیارت پڑھ لیں, کسی بھی دن پڑھ لیں. اس میں دوسری زیارت بہت زیادہ مشہور ہے جس کا تذکرہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, زیارت امین اللہ. تو زیارت امین اللہ کو الگ سے نہ سمجھا جائے, یہ مطلقہ جو 7 زیارات مفاتی میں مشہور مذکور ہیں اس میں دوسری زیارت کا نام زیارت امین اللہ ہے, اور بہت مشہور زیارت ہے. زیارت مخصوصہ ہم نے جیسے بتایا کہ ہر دن کے حوالے سے, خصوصی ایام کے حوالے سے, جیسے 18 ذی الحج کے حوالے سے, جیسے 27 رجب کے حوالے سے, یہ بھی مفاتی میں موجود ہے, اس کو ضرور پڑھیے. عموماً نہیں, الحمدللہ ہر وقت جب بھی آپ حرم میں داخل ہوں گے تو مفاتی وہاں موجود ہوتی ہے, بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ یا تو اردو فارسی میں ہوگی یا عربی میں ہوگی. تو اگر آپ نہیں چاہتے کچھ ہاتھ میں لے کے جانا تو وہاں پہ وہ مل جائے گی. لیکن ایک مشورہ, ایک نصیحت اور ایک بات ہم یہاں پہ ضرور شیئر کریں گے کہ کوشش کریں زیارت پہ جائیں یا نہ جائیں, جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کا ایک مرتبہ, دو مرتبہ یا 10 مرتبہ اردو ترجمہ ضرور پڑھیں, اور اس طرح پڑھیں کہ وہ زیارت آپ کو اردو ترجمے کے مفاہیم کے حوالے سے, مطالب کے حوالے سے یاد ہو جائے, کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو وہ اردو ترجمہ آپ کے ذہن میں آئے, تب آپ کو لطف آئے گا. تو جو لوگ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں وہ ایک اپنا ہوم ورک بنا لیں کہ زیارت پہ جانے سے پہلے ایک ہفتہ, دو ہفتہ یا ایک مہینہ, عموماً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جب پلان کرتے ہیں وہ, کہ میں یہ تمام زیارات, یہ اذکار, یہ دعائیں جو مجھے وہاں جا کے پڑھنی ہیں, ابھی انشاءاللہ تمام کا تذکرہ آئے گا, وہ جو مجھے وہاں جا کے پڑھنی ہیں ان کا میں اردو ترجمہ پڑھ لوں, تاکہ جب آپ جائیں تو ایک رٹو دو تو کی طرح نہ پڑھیں, آپ کی توجہ ہو آپ کی زیارت کی طرف, آپ کی دعا کی طرف, ताकि आप जो है वो रूहानियत, जैसे हमने बताया रूहानियत हासिल करने का एक तरीका ये है कि आदमी जो है तर्जुमे से दुआओं को पढ़े। वहाँ पे लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते तो आपके पास टाइम नहीं होता, अगर आप उर्दू तर्जुमे वाली मफाती भी लेके जाएं फ़र्ज़ कर लें तो, जैसे सूरह फातिहा है, अगर आप सूरह फातिहा पढ़ें तो आपका तर्जुमा आपके जहन में आता चला जाएगा, कुल अल्लाह का तर्जुमा सूरह कौसर सूरह बदर का। तो इसी तरह आप ज़ियारात की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब ज़ियारात का कोई जुमला बोला जाए या मौलाना साहब पढ़ें या बाजमात पढ़ें तो उसका तर्जुमा आपके जहन में आता चला जाए। इसके बाद तरीका ज़ियारत हमने बता दिया था, फिर हम याद दहानी करवा दें बहुत ही अदब के साथ। हमने बताया कि जब आपको वहाँ जाना है तो अराइवल यानी वरूद शहर नजफ दुआ पढ़नी है, फिर दखूल शहर नजफ दुआ पढ़नी है, फिर इज़्न दखूल दुआ पढ़नी है, फिर सहन में जब आए दाखिल हुए दुआ पढ़नी है, सहन के बीच में दुआ पढ़नी है, फिर मरकद जिसे कहते हैं कॉरिडोर, जब मतलब सहन और ज़री मुबारक के दरमियान जो रास्ता होता है पैसेज उसको कॉरिडोर कहते हैं, उस मरकद में आपको दुआ पढ़नी है। फिर पाइंदी पाँव की तरफ से दाखिल होना है आपको, हर इमाम के हरम में पाँव की तरफ से दाखिल होना है, ये अदब भी है और अकल भी है कि आदमी अगर खड़ा होगा आपके सामने तो जब आप उससे रूबरू बात करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे वो आदमी लेट जाता है तो वो जिस तरह जब लेटेगा तो उसका पाँव आपकी तरफ होगा, अकल भी ये कहती है तरीका यही होना चाहिए कि पाँव की तरफ से दाखिल हो, और अदब भी यही कहता है कि मौला के पाँव की तरफ से पाइंती की तरफ से दाखिल हो। ये जो ऐवान ज़हब है और दो जो गोल्ड के सोने की मीनार है, ये वो डायरेक्शन है कि जब आप दाखिल होंगे इस तरफ से तो वो पाइंती होगी यानी पाए अकदस मौला का, वहाँ से आपको दाखिल होना है। तो वहाँ दाखिल हो गए, दाखिल होने के बाद फिर आपको जो है वो ज़ियारत वगैरह पढ़नी है। एक तो हमने बता दिया ज़ियारत मुतलका ज़ियारत मखसूसा, लेकिन जाहिर सी बात है आदमी का वहाँ 5-6 दिन का स्टे होता है, अगर आपका 10-12 दिन का पैकेज है तो 3-4 दिन 5 दिन आपको नजफ में, इसी तरह 4-5 दिन करबला में, 1 दिन काजमैन में, फिर सामरा में और दबे होते हुए आप जाएंगे। तो आदमी का जी चाहता है मैं अब क्या पढ़ूँ, तो कुछ लोग तो बेचारे पढ़ते नहीं, मालूम ही नहीं है उनको, बस एक रटी रटाई ज़ियारत पढ़ ली और फिर आगे वापस, दूसरे दिन बस इधर उधर देखते हुए कौन क्या कर रहा है और फिर वापस आ गए, मीनारों को देख लिया, बिल्डिंग को देख लिया, सहन को देख लिया, उनकी नक्श निगारी को देख लिया। नहीं, ये ना करें, वो भी देखें, लेकिन बहरहाल जो दुआएँ और अज़कार मज़कूर हैं उस तौर पर हम जो है पाकिस्तानी ख़वातीन की बड़ी दाद देंगे कि ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव मुतहर्रिक होती है माशाल्लाह, वो कोई दकीका फ़रोग गुजाश नहीं करती, वो कोई अमल नहीं छोड़ती माशाल्लाह। तो आप लोगों को बतलाते हुए तो ज़्यादा खुशी होती है कि इंशाल्लाह आप इस पर अमल कर लेंगे। मर्द हज़रात थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं, लेकिन उनको भी आप ही ने तैयार करना है और आप ही ने जो है वो उनको मजबूर करना है कि भाई आप भी तमाम ये बातें करें, काम करें, बच्चों को भी तैयार करें। अभी हम इंशाल्लाह अमाल बताते हैं आपको कि अगर वो बड़ी बड़ी नमाजें, बड़ी बड़ी दुआएं, बड़ी बड़ी ज़ियारतें नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी नमाजें, छोटे छोटे अज़कार हैं वो उनको समझा दें। करबला या नजफ में जब भी आप वारिद हों तो सबसे पहला काम करें कि वहाँ दुकान में जाके तस्बीह खरीदें, उसको हाथ में ले लें, अपने बच्चे को दें, अपने शौहर को दें, अपने अब्बू को दें, अपने भाई को दें, और ये बना लें अपना वतीरा कि मैं जब तक यहाँ रहूँगी ये तस्बीह मेरे हाथ में होगी और मुझे कुछ ना कुछ जिक्र करना होगा। तस्बीह हाथ में होती है तो आदमी को, अब वहाँ पे देखें वो शौक वाला मामला भी नहीं है, इस वक्त आप तस्बीह लेके घर में घूमें, कराची में घूमें तो स्कूल कॉलेज जाएँ तो बड़ा ऑड लगेगा, लगना तो नहीं चाहिए, बहरहाल हम जो म्यूजिकल डिवाइस लेके घूम रहे होते हैं हमें ऑड नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे चलें बहरहाल चंदा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी तस्बीह आपके हाथ में, आपको याद रहेगा कि मैं यहाँ पे जिक्र करने आया हूँ, मैं अल्लाह की जो है वो अल्लाह की रूहानियत को, मौला की रूहानियत को कस्ब करने आया हूँ। और जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं मसलन ज़ियारात की मद में, ज़ियारात के ज़मन में ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ सकते हैं। और एक ज़ियारत जो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सर अकदस हुसैन, इमाम हुसैन की भी ज़ियारत है जो मफाती में मज़कूर है, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक सर अकदस हुसैन जो है वो वहाँ पर दफन है, इसका इंशाअल्लाह तज़किरा आगे आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे कि हम क्या करें तो उनको कहेंगे भाई या अली का विर्द करो, वैसे जो किताबों में मज़कूर है 12,000 मरतबा या अली कहना बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और आपकी हाजात की बराबरी के लिए बहुत ज़्यादा आजमूदा है। रिज़्क के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो आपको, औलाद के हवाले से प्रॉब्लम हो, इज़्ज़त नामूस के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, रिश्ते नातों के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, फ़र्ज़ की अदायगी के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, 12,000 मरतबा या अली या अली या अली या अली अली फ़कत अगर आप ये कहें और इस जैसे बहुत सारे असकार आपको आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी की किताब अल्फैन मुजर्रबैन यानी 2000 मुजर्रब नुस्खे या 2000 मुजर्रब अजकार आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी के बारे में कहा जाता है कि ये सैयद शुहदा के हरम में दफन है और अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मुकद्दस रूहानी शख्सियत हुआ करते थे और इतने ज़्यादा मुस्तनद के आयतुल्ला खोई को अगर कभी इस्तखारा निकलवाना होता था तो आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी से निकलवाया करते थे। तो उन्होंने अपनी किताब में इस वर्द का जो है 12000 मरतबा या अली का तस्करा किया है। ये आप करें नादे अली 110 मरतबा अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ें और फिर अपनी हाजात जो है वो अल्लाह से मांगे। तस्बीहात अरबा का जितना ज़्यादा तस्करा कर सकते हैं और वर्द कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा सरहाने मौला अली के खड़े होकर 14 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक्क फातिमती व अबीहा व बबअलुहा व बनीहा व सिर्रल मुस्तौदे फीहा कि मैं जो हूँ बेहक फातिमा उनके वालिद उनके शोहर और उनके दो बेटे बेटों और वो सिर्रुल वो असरारे इलाही जो उनमें छुपे हुए हैं उनके हक से उनके वसीले से अल्लाह मैं तुझसे ये चीज़ मांगता हूँ ये चीज़ मांगती हूँ। तो जो चीज़ आपको चाहिए 14 मरतबा ये जिक्र करके इंशाल्लाह मांगे तो वो हाजत पूरी होगी। दुआ में दुआए कुमैल दुआए जोशनी कबीर दुआए तौबा कोई मुश्किल काम नहीं। देखिए 5 दिन आपको गुजारने हैं। 5 दिन का मतलब है कि 24 घंटों के हवाले से अगर हम बात करें तो कम अज़ कम 100 से ज़्यादा घंटे आपके पास मौजूद हैं। और अगर ये जितने भी अमल मैंने अभी आपको बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ ये 3-4 घंटे से ज़्यादा के नहीं है, 5 घंटे से ज़्यादा के नहीं है। अगर आप बैठ जाएँ और कैलकुलेट करें स्टॉप वॉच लगा के कि मुझे ये असकार करने ये दुआएँ ये नमाजें 5 घंटे तो 5 दिन तो बहुत बड़ी बात है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने अमाल कर लिए असकार कर लिए बस काफ़ी है अब जो है बस हम घूमने आए अब हम जो है वो घूमने के आए फिर आप शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे फिर आप गपशप में लग जाएंगे फिर वही अपनी कराची या अपने मुल्क की बातें शुरू हो जाएंगी तो आप ये पहली फुर्सत में ज़हनी तौर पर जैसे हमने कहा था प्रेजेंट रहने का एक तरीका ये है कि जो आमाल हैं उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ अदा किया जाए। इसके अलावा नमाज जाफर तैयार नमाज इमाम ज़माना 2 रकात नमाज जिसमें पहली रकात में सूरह यासीन दूसरी में सूरह रहमान नहीं याद कोई मसला नहीं है आप जो है उसको देखे पढ़ लें। नमाज अमीरुल मोमिनीन 4 रकात है 2-2 रकात करके पढ़ना है। हर रकात में 50 मरतबा कुल अल्लाह एक इसी तरह की नमाज हमने 2 रकात आपको बताई थी उसमें जो है वो 5 मरतबा था इसमें जो है वो 50 मरतबा। इसी तरह नमाज हाजात वहाँ खसूसी तौर पर पढ़ी जाती है कोई बहुत बड़ा मसला है कोई बहुत बड़ा इशू है कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जो आप पे फ़र्ज़ कर लें आज पढ़ी और आपको किसी तरह उससे निकलना है और मसले को हल करना है तो 2 रकात नमाज हाजत इस तरह पढ़नी है कि हर रकात में 4 कुल जो आपके हैं 4 कुल के अलावा सूरह कद्र सूरह नसर और सूरह आला 4 और 3 7 7 सूरह हर रकात में और 2 रकात नमाज आपको पढ़नी होगी और फिर कहीं जाके इंशाल्लाह आप जो कुछ भी मांगेंगे मौला आपको बता करेंगे। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले बाद ज़ियारत आदम अलैहिस्सलाम करनी मफाती में मनकूल है मस्कूर है। उसके बाद ज़ियारत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपको करनी है। ये प्रिंट आउट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा आज तो नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसमें तमाम ये अस्कार लिखे हुए होंगे अगर आप ना भी लिखे तो इंशाल्लाह कोई मज़ाक नहीं। अच्छा अब तक की जो आप ये आपके आमाल हैं अगर आप चाहें तो ये एक गो में कर लें इसमें थकन भी होगी आप फ़ौरन गए हुए भी होंगे फ़र्स्ट टाइम होगा और जाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम के असकार व अमाल थोड़ा सा जो है आदमी की एनर्जी लेते हैं आदमी जो है वो एडजस्ट होते होते टाइम लगता है या तो रेस्ट कर लें या तो होटल वापस आ जाएं या दूसरे दिन के लिए अगर रखें जो भी रख लें उसके बाद आप फ्रेश जाएं और देखें कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें यानी गैर मासूम और ऐसी जगह जिससे कोई वाकया या कोई मौजूदा या करामत जो है मनसूबे और इंशाल्लाह यकीन करें आप बहुत सैर होकर वापस आएंगे। एक तो होता ना कि आप एक मेन डिश खा रहे होते हैं मेन डिश के साथ जो है रायता भी मिल जाए केचप भी मिल जाए फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाए ये तमाम चीज़ें तो आपको मज़ा आ जाता है पकौड़े आप बगैर चटनी के खाएं आपको क्या मज़ा आएगा। तो आदमी कहता है ये तमाम लवाजमात हो तो क्या ही मज़ा है। तो ठीक है मौला की ज़्यारत के लिए जा रहे हैं मौला की मारिफत हासिल करने जा रहे हैं लेकिन उन लोगों को नहीं भूलें तो जिन लोगों ने हमें मौला की मारिफत करवाई यकीन करें ये लोग ना होते जिन्होंने कुतुब अरबा लिखी ये लोग ना होते कि जिन्होंने हमें मसाइल से आगाही दी, तारीख लिखी बहरुल अनवार के लिखने वाले अल्लामा मजलिसी, ये ना होते तो हमें क्या पता चलता, रिवायतों में नहीं पता चलता। और उलमा भी ऐसे यकीन करें जब आप सुने तो आप कहेंगे कि ये तो आप इन लोगों को अली से मिला रहे हैं। अरे जब अली के फजाइल बयान करते करते लगता है कि आप खुदा से मिला रहे हैं तो अली के मानने वालों की बातें करते करते नहीं लगेगा कि हम इनको अली से मिला रहे हैं। जब आप निकलेंगे, अच्छा निकलेंगे तो आप बैकवर्ड मूव करेंगे, पलट के नहीं मूव करेंगे, बैक आपकी जरी पे नहीं होनी चाहिए, ये सुए अदब है। जब आप निकलें तो उल्टे पाँव निकलें। उलमा आलम का और तमाम जायरीन का ये तरीका है और इस पर पूरी तरह कारबंद रहे, जब आप निकलें तो उल्टे पाँव निकलें, बैक जरी की तरफ नहीं होनी चाहिए। कहाँ से निकलेंगे आप, जाहिर से बातें फिर पांती की तरफ वापस आए, आप पांती की तरफ से आपने शुरू किया, फिर जो है आप जरी पे गए, पुश्त बा क़िबला और रू बा जरी हुए, फिर सरहाने गए, और फिर सरहाने जो है वो मौला की ज़ियारत, आदम और नूह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, वो पढ़ लिया आपने। अब दोबारा आप पाइंती की तरफ आए और वहाँ से आप बैकवर्ड सफ़र शुरू करें तो आप कहाँ पे वापस पलटेंगे, ये जो ऐवान तला है या सोने का बना हुआ ऐवान है और जो दो इमारें मीनारे हैं जिनमें 14,000 से ज़्यादा सोने की ईंटें जो है लगी हुई। अच्छा इसमें भी एक मौजज़ा हो चुका था, एक गरीब शख्स आया, उसने कहा मौला इतनी सारी ईंटें, एक ईंट मुझे भी दे दें। वह मांगने वाले तो मांगते हैं, अब जारी बात है बाजू का तो ऑकवर्ड भी लग रहा होता है, लेकिन मौला के लिए कोई चीज़ ऑकवर्ड नहीं होती। उसी बात ईंट गिरी और उसे उठा ली। आसमान से कोई चीज़ गिरे, हरम में गिरे, सोने की गिरे तो सबकी नजरें, या तो चवन्नी गिरे कोई उठाए तो दूसरे लोग आ जाते हैं, हमारा भी हिस्सा दो, हमारा भी भत्ता दो। लोगों ने इसको पकड़ लिया, हम तो नहीं जाने देंगे, इसलिए नहीं कि खयानत, इसलिए नहीं हसद, नहीं हमें भी दो, अब सोने को कैसे तोड़े। बहुत सर पटक वाल बड़ा मसला खड़ा हुआ, वो हाकिम के पास गया, भाई उलमा को बुलाया, तो नहीं पहले दिन तो उलमा को नहीं बुलाया, मुतवल्ली के पास गया, उन्होंने कहा नहीं वापस करो ये तो अमानत है। दूसरे दिन गया, फिर उसने दुआ मांगी, ये मौला इतनी सारी ईंटें एक तो दे दें, इस दफा छुपा के ले जाऊंगा। फिर गिरी, फिर जाने लगा, फिर उसको पकड़ लिया, फिर मारपीट शुरू हुई। तीसरे दिन फिर यही हरकत और वो गिरी। अब इस दफा लोगों ने कहा भाई ये कुछ संजीदा मामला लगता, उलमा के पास लेके जाओ। तो उस जमाने में जो गालिबन सैयद मेहंदी बिरुल उलूम थे उनके पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको ले जाने दो, तो वो खास ही उसको ले जाने दी। अब इस तरह आपको आपको मालूम होगा कि बाद वक्त तो तकवा परहेजगारी भी जरूरत नहीं होती, एक शौक होना चाहिए। एक बच्चा है ना, अमूमन सबसे नाफरमान बच्चा सबसे ज्यादा जिद करता है माँ से, माँ क्या कहती, ये लो लो मरो, जान खा दी तुमने, जान जो है मुसीबत में कर दी है। और जो फरमानबरदार बच्चा होता है, बेटा आप तो समझदार हो ना, अभी जो है पकौड़े जो है वो पके नहीं है, अभी बोटी गली नहीं है, गोश्त गला नहीं, तुमको बाद ये बेसब्रा इसको दे दूँ पहले। मौला ऐसे लोगों को जल्दी देते हैं, मांगना आना चाहिए, बस आप बैठ जाए बिल बिलाए। भाई देखे ना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो बिल बिलाए थे ना, कैसी एड़ियाँ रख ली थी, कैसे चश्मा निकल गया। अब आप भी कहेंगे मौला मैं तो नहीं जाने का, आप कुछ भी कर लें मैं तो नहीं जाऊँगा, यहीं मरूंगा मैं, अपना जो है सवाल का जवाब अभी मैं अभी आपको एक किस्सा सुनाऊंगा इख्तिताम पर कि किस तरह मौला ने एक शख्स को नवाजा। तो बहरहाल इस जगह से आपको वापस आना है। अभी देखें जैसे आप वापस आएंगे तो राइट हैंड पे ये जो है ये आपको एरो नजर आ रहा है, ये अल्लामा हिल्ली यहाँ पे मदफून है, और उल्टे हाथ पे मुकद्दस हवेली। यकीन करें लोग कई कई मरतबा ज्यारत करके आ जाते हैं और बेचारों को ये नहीं मालूम होता है, इतने मुकद्दस, इतने मोतबर, इतने आरिफ उलमा यहाँ पे सब दफन है, अल्लामा हिल्ली सीधे हाथ पे और मुकद्दस हवेली। अच्छा अब इनके बारे में थोड़ा सा सुन लें, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप जिस शख्सियत की ज्यारत करते हैं उस शख्सियत की थोड़ी सी मालूमात अगर हो तो फिर उससे मौला अली के मुजज़ात करामात खिदमात और जो कुछ उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी अगर नहीं मालूम तो आपको क्या मज़ा आएगा। आप जब जाते हैं मौला की ज्यारत को और जो रूहानियत लेकर आते हैं, इसलिए तो लेकर आते हैं कि उनको जान कर, उनको पहचान कर, उनकी मारिफत रख कर हमने ज्यारत की है, ऐसे थोड़ी की है। हाँ भाई एक साहब रसूल थे, हाँ भाई शियों के इमाम थे, या हमारे जो पहले इमाम, नहीं नहीं बाकायदा मारिफत के साथ कि क्या शख्सियत थे। अल्लामा हिल्ली, अल्लामा हिल्ली हिल्ला से इनका ताल्लुक था, अपने ज़माने में बहुत बड़े आलिम दीन थे, बल्कि इनका पूरा ख़ानदान का ख़ानदान जो है वो मुश्ताहिद, इनके वालिद सदीदुद्दीन हिल्ली जिन्होंने इनको पढ़ाया, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जिन्होंने इनको पढ़ाया, वो तो इनके ख़ानदान के नहीं थे, लेकिन मुहक्क़िक़ हिल्ली मामू जिन्होंने इनको पढ़ाया, फिर इन्होंने जो है वो सबका पढ़ाया वह अपने बच्चे पर निकाला, और फिर मुहक्क़िक़ हिल्ली फ़ख्रुल मुहक्क़िक़ीन अपने बच्चे को मतलब बुलूग़ से पहले मुश्ताहिद बना के छोड़ा। तो अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि इतने ज़्यादा ज़ीरक, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कि जब किसी आलिम दीन से उस ज़माने में कहा जाता था कि अल्लामा हिल्ली की तारीफ करें कर लेंगे, अभी क्या फ़ायदा, इससे क्या उनका मर्तबा बुलंद हो जाएगा क्या? वो जितने बुलंद मर्तबे पे हैं काफ़ी है, हमारी तारीफ से कुछ नहीं होगा। इस वक्त अगर हम किसी को आयतुल्ला कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो मुश्ताहिद होता है। तारीख में जब उलमा में किसी को आयतुल्ला कहा जाता था तो उससे मुराद अल्लामा हिल्ली हुआ करते। अपने ज़माने में अल्लामा हिल्ली के बारे में बता रहा हूँ कि मनाजरे के बड़े आलिम थे, और अपने ज़माने में उस ज़माने में एक बादशाह था खुदा बंदे, तो उसके दरबार में आलिम दोस्त था, उसने मनाजरा करवाया शिया और गैर शिया उलमा के दरमियान, तो ये जीत गए तो बादशाह भी कन्वर्ट हो गया। फिर बादशाह ने जो है मदरसे बनाने शुरू किए, एक मदरसा उसने मोबाइल मदरसा बनाया, मोबाइल क्लिनिक्स होते ना हमारे, उसने मोबाइल मदरसा कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा शिकार पे या सैर पे ये मदरसा मेरे साथ चलेगा। तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा हिल्ला मशहूर हुआ कि 400 मुश्ताहिदीन फ़कत हमें हिल्ला में नज़र आते थे। तो अल्लामा हिल्ली की बड़ी खिदमत है, एक खिदमत तो ये है कि उन्होंने 100 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी मुख्तलिफ़ मौजूआत। अच्छा ये मैं एक अजीब बात बता दूँ, उलमा ने किताबें लिखी हैं, अल्लामा हिल्ली वाहिद आलिम है कि जिन पर फ़कत 70 किताबें लिखी गई हैं उनकी ज़ात पर, उनके इल्मी कारनामों पर। और जो बड़ा कारनामा हमें नज़र आता है अल्लामा हिल्ली का कि उन्होंने अपने ज़माने में हदीसों की दर्जा बंदी की, अतला खोई के बारे में कहा था ना कि इल्म रिजाल के बारे में इतनी मुस्तनद किताब लिखी है कि अब मौजूदा दौर के मुश्ताहिदीन को बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ती कि फ़लाँ रावी सक्का है कि नहीं, मुस्तनद रिवायत है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती। तो उस ज़माने में हदीस या तो सही होती थी या ज़ईफ, बस गलत या सही, लेकिन उन्होंने आगे बताया कि नहीं मुवस्सक भी हो सकती है, मुरसिल भी हो सकती है, गैर मुरसिल, और फिर जितनी भी अहदीस की दर्जा बंदी है, फिर उन्होंने बताया कि कौन सी अहदीस कहाँ यूज़ हो सकती है, कुछ कुछ अकसाम की अहदीस फ़िक्र में इस्तेमाल हो सकती है, कुछ की अखलाक में भी चल जाएंगी, कौन सी हदीसें जो फ़िक्र में नहीं इस्तेमाल हो सकती लेकिन अखलाक के मौजूद में चल जाएगी। तो ये काम अल्लामा हिल्ली ने अपने ज़माने में किया, और बहुत सारे लोगों को अहले तशय्यों की तरफ जो है इनके मनाजरे मशहूर हैं, कभी इंशाल्लाह हुआ तो हम इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। दोबारा इनका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है कि इल्मी खिदमत पर मामूर था, और अपने ज़माने में मुंतज़मीन और गवर्नर और बादशाहों तक उनकी रसाई थी। मुख्तसर बेली, देखिए इनका नाम इस नाम में नहीं है, इनका नाम था अहमद, इतने बातकवा कि इनका नाम मुकद्दस पड़ गया, अर्थबेल के रहने वाले मुकद्दस अर्थबेल। देखिए अभी तो हम जाते हैं ना होटलों में खाना अगर ऐसा वैसा मिल जाए तो हम पूरा होटल जो है वो सर पे उठा लेते, आसमान को उठा लेते। मुकद्दस अर्थबेली उन उलमा में से है जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने अपने दही अयाम इंतहाई कसमा कुर्सी में गुजारे, तरबूज के छिलके खाकर इन्होंने अपना इब्तदाई दौर गुजारा। अगर हमको कोई तरबूज भी दे देना मीठा वो भी हम लेने से इनकार कर देंगे, नहीं कुछ और भी लाओ, तरबूज के छिलके। अच्छा इनके साथ एक और दोस्त इनका हुआ करता था, तो ये क्या किया करते थे कि दोस्त को पता ना चले मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको कहते थे कि भाई भाई फला वक्त नहीं आना, ज़रा मैं ज़रा मसरूफ होता हूँ 15 मिनट, तो वो नहीं आता था। अच्छा इतफाक़ से वो दोस्त भी इनको यही कहता था कि आप भी ज़रा जो है वो फ़लाँ वक्त नहीं आइएगा कमरे में, ज़रा मैं मसरूफ होता हूँ। इतफाक़ से ये घुस गए एक दिन, मालूम नहीं था कि दोस्त मौजूद है और ये हमारी बात हो चुकी है, तो पता चला कि वो तरबूज की छिलकी खा रहा है वो भी। तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, दोनों रोए कि चलो हम दोनों का हाल एक जैसा है, अब हमें एक दूसरे से तकवियत मिलेगी, और हम तरबूज के छिलके खा कर ये नहीं कहेंगे कि फ़कत मैं ही हूँ जो तरबूज के छिलके खा रहा है। तो ये तरबूज के छिलके खाने वाले लोग थे जिनकी वजह से अब नजफ उस मुकाम पर, देखिए तरबूज के छिलके जो खाता हो उसको पैसों की कितनी ज़रूरत होगी, हमारे पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी कोई प्राइज बॉन्ड निकला है, कोई लॉटरी निकला है, या कोई वैसी अशरफी की थैली हमारे घर में दिया, पलट भी पूछेंगे भी नहीं कि क्यों दे रहे खरीद, तो मैं डिजर्व तो नहीं करता। वो ऑस्ट्रेलिया में एक कोई ईमेल आई थी ना कि आप अनलिमिटेड लोन ले सकते हैं, तो $2 मिलियन ने लोन ले डाला और खर्च भी कर डाला, गाड़ियां पे गाड़ियां और होटल्स और घर सब। बाद में पता लगा वो ईमेल गलती से उसको चली गई थी, लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड लिख दिया उन्होंने, UN लिख दिया। अब जाहिर सी बात है कोई अनलिमिटेड, अगर आपको ये लिखे कि आपको अनलिमिटेड लोन पे करना है, आप गुस्से में आपका बिजली का बिल 500 रुपये ज़्यादा आ जाता तो आप KC के ऑफिस पहुँच जाते। मुकद्दस और मेरी एक दफ़ा कुएं से पानी निकाल रहे थे तो डोल में पानी की बजाय अचरफियाँ आ गई। जैसी अचरफियाँ देखी हम होते तो बेहोश हो जाते, खुद भी गिरते डोल भी गिरता। उन्होंने फौरन डोल वापस फेंक दिया, क्या कह कर ए अल्लाह मैंने पानी मांगा था अचरफियाँ ने। दूसरी दफ़ा डोल डाला निकाला, इस दफ़ा भी अचरफियाँ। हम होते तो क्या कहते, पहली मरतबा तो ये कहते अल्लाह खुदा का शुक्र तूने सुन ली, कितने अरसों से तरबूज के छिलके खा रहे थे, चलो अब जो है तरबूज खाएंगे। दूसरी मरतबा हम क्या कहते, अल्लाह हम तो नहीं चाहते लेकिन अगर तू यही चाहता है तो बस। दूसरी मरतबा भी मुकद्दस अकबिली ने यही कहा कि अल्लाह मैंने तुझसे पानी मांगा अशरफिया। ठीक, कुछ अरसे बाद एक शख्स आया और जब उनकी हालत देखी तो 1000 अशरफिया उनको जबरदस्ती लेके गया कि आपको इस्तेमाल कर ली, मैं कसम देता हूँ। अब ले लिए बगैर कोई चारा ही नहीं था, उन्होंने रख ली वो अशरफिया। अगले दिन सुबह जो है नमाज शब के लिए उठे, गुसल करना था उनको, गुसल हमाम में होता था, हमाम बाहर होता था और उसके कुछ पैसे होते थे हमाम में नहाने के। वो गए नॉक किया, जारी पता नमाज शब हमारी तरह तो नहीं, ईजीएस्ट वे ईजी लोड की तरह पढ़ ली अपने फौरन मगरिब के बाद, वो नमाज फजर वाली नमाज शब पढ़ते थे। तो गए नॉक किया कि मुझे नहाना है, कहने लगे ये तो कोई वक्त नहीं है, नमाज फजर की अजान के वक्त खुलेगा हमाम। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लेना, अभी दरवाज़ा खोल दो, मुझे नहाना है, मेरी नमाज शब ना छूटी है। मैं कितने दोगे, कितने मैं तुम जितने कहो। कहने अच्छा मैं दुगने लूँगा, 10 दिरहम दे सकता, मैं 20 दिरहम लूँगा। उसने कहा ठीक है ले लेना। कहे नहीं नहीं इससे ज़्यादा लूँगा। कहला चलो ठीक है तुम ले लो, कितने लेने, मुझे जो है वो 100 दिरहम चाहिए। करते 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 500 फिर 1000 दिरहम, 1000 अशरफी पे आ गया वो। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो दरवाज़ा खोल के देखा ये कौन पागल है जो 1000 अशरफियाँ देने के लिए तैयार है। देखा तो मुकद्दस अकबिली अशरफी की थैली लेके खड़े हुए थे, उसने अशरफी पकड़ाई, फौरन गुस्ल खाने गए, नहाए, नमाज शब पढ़ी। तो जो शख्स नमाज शब के बदले 1000 अशरफी देता हो तो क्या उसका दर्जा होगा। हमें तो कोई इनवाइट करते हैं डिनर पार्टी पे, हम चलाएंगे खूब डटके खाएंगे, चाहे नमाज फजर ही क्यों ना कज़ा हो जाए, कोई किसी का फ़ोन आ जाए लंबी आधे घंटे एक घंटे की गुफ्तगू, कोई मसला नहीं। नमाज शब क्या, नमाज फजर ही कज़ा हो जाए, हमें मालूम ही नहीं होता, बस सुबह उठ के सोच रहे होते कि नमाज फजर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। चले खैर चाय पी लिए, ठंडी हो रही है। तो मुकद्दस अकबिली ये उनका लेवल था, जब ही ऐसे ही लोगों को मौला सलाम का जवाब दिया करते थे, ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है मुकद्दस अकबिली रात के वक्त जब हरम में दाखिल होते थे तो कुफ्र खुद ब खुद टूट जाया करते थे। यही मुकद्दस अकबिली है कि जब पर्ची पे सवाल लिख के अंदर फेंकते थे कि मुझे आज ही समझ में नहीं आया। हम ट्यूटर के लिए कहते थे ना कि भाई ये होमवर्क कर लिया, ट्यूटर से कहा ये नहीं समझ में आया, मौला अली फौरन जवाब देते थे। यही वो मुकद्दस अकबिली है कि जिनके लिए मौला ने कहा था कि इस आखिरी सवाल का जवाब मेरे बेटे से पूछो, फला जगह है। वो मस्जिद से अलग गए, जब इमाम ज़माना के पास पहुंचे तो इमाम ज़माना ने कहा कि तुम हमसे मिलने नहीं आते। देखिए ऐसे होते लोग, हम तो वो हैं कि हम कहते हैं मौला अब हमसे नहीं मिलते, अब हमसे नहीं मिलते। ऐसा बनिए कि इमाम ज़माना कहें कि तुम हमसे मिलने की दुआ नहीं करते, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते। इनके सर पे जो इतना बड़ा अमामा नजर आ रहा है, इसके हवाले से भी मैंने वाकया पढ़ा है कि एक दफ़ा वो जा रहे थे तो वो कुछ था नहीं उनके पास, एक साहिल आया, उन्होंने उन्हें अमामे में से कपड़ा निकाल के फाड़ के दे दिया, दूसरा आया उसके साथ भी, तीसरा आया, पूरा अमामा घर जाते जाते खाली। हमारे ज़माने में तो नंगे सर चलना कोई इतना मायूब नहीं है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा, और उलमा के लिए तो ख़ास तौर पर नजफ में तो बहुत ज़रूरी है, आलिम दीन बगैर अमामे अब कबा के ना निकले। मराजीन ने कहा है खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तुम्हारे साथ गैर मुल्कियों को खसूसी तौर पर और तुम्हारे सर पर अमामा ना हुआ तो हमसे ना कहना, हम नहीं छोड़वाएंगे। बहुत मायूब समझा जाता है कि आलिम दीन अगर जो है अबा कबा और अमामे के बगैर निकले। बल्कि स्टूडेंट्स जो हुआ करते हैं पहले ही दिन उनका यूनिफॉर्म ही यही होता है, अमामा और अबा कबा। तो ये बहरहाल आपके मुकद्दस अकबिली थे, कि जिनकी वजह से अच्छा इनको बहुत ऑफर हुई उस ज़माने में कि आप अस्फहान आ जाएं। उस ज़माने में अस्फहान जो है वो बहुत बड़ा मरकज था, लेकिन वो नहीं गए और इन्हीं की वजह से कह जैसे हमने आपको बताया शेख तूसी आए थे सबसे पहले नजफ में, यानी पहली मरतबा नजफ को जो रिकोगनाइज करवाया है मौला अली की मरकज मुबारक के अलावा बाद में जिन लोगों ने उसमें शेख तूसी थे सबसे पहले, उसके बाद मुकदस बेले। अब आइए आसार हरम की तरफ, ये देखिए 15 कमोबेश चीज़ें हैं जो यहाँ मौजूद हैं, इनकी तो आपको ज्यारत करनी ही करनी है, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं उनकी भी ज्यारत हम करेंगे और आपको बताएंगे। कोशिश करें कि ये स्पॉट, ये जो स्पॉट्स हैं 15 और ये जो पिक्चर है इसका स्नैपशॉट ले लें मोबाइल से, नहीं अपने आंखों से, अपने जहन में, और नजफ जाने से पहले पहले ये पिक्चर आपको याद हो। कम अज़ कम फ़ायदा ये होगा आप घूमेंगे नहीं, घूम जाते लोग काफिले से किस दरवाजे दाखिल हुए फिर बाद में किसी और दरवाजे से निकल गए, कम अज़ कम ये होगा, वरना मारिफत दोबारा होगी। दूसरी बात है कि चीज़ें इग्नोर नहीं होंगी, जब भी आप दाखिल होंगे आपको पता चल जाएगा मेरे लेफ्ट पे क्या है राइट पे क्या है, और जैसे आप वो चीज़ें देखेंगे तो आपको जो है वो फिर वो कहानी वो पस मंज़र भी याद आएगा। देखें ये है सबसे पहले आपका बाब कबीर या बाब अली रज़ा, इसकी तफसील इंशाल्लाह वन बाय वन हम कर लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे बाब मुस्लिम बिन अकील, तीसरे नंबर पे मस्जिद खिजरा, चौथे नंबर पे हुसैनिया मदरसा गरबिया, पांचवें नंबर पे बाब शेख तूसी, छठे नंबर पे ऐवान उलमा, सातवें नंबर पर मस्जिद इमरान बिन शाहीन, आठवें नंबर पर मकतब हैदरिया, नवा नंबर पे तकिया बिकताशिया या हुसैनिया बिकताशिया, फिर दसवें नंबर पे रवाब अबू तालिब, उसके बाद ग्यारहवें नंबर पर लाउदान या मीज़ अबी रहमत पर नाला, बारहवें नंबर पे ये आपका बाब क़िबला, फिर तेरहवें नंबर पे आप बाहर आ जाएं ये पूरा जो है वो सहन फ़ातिमा है, और सहन फ़ातिमा के साथ मुत्तसिल है मेहमान खाना मुज़ाइफ जिसे कहते हैं, बाहर के जो अफराद होते हैं ज़ाहिर उनको खाना खिलाया जाता है फ्री, और फिर वापस आप आए ये जो है 15वां जो है बाब फरज जो इमाम ज़माना से मंसूब है। अब आइए एक एक करके इन मकामात की सैर करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या इबरतें पोशीदा हैं। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मामा देखें ये जो ऐवान तला ऐवान ज़हब सोने का दरवाज़ा जो है और जो सोने की दो मीनार हैं, हमने बताया कि ये वो एंट्रेंस है कि जहाँ पे आप मौला की पाइंती को अप्रोच करेंगे जाएंगे, ठीक है। तो बस आप ये समझ लीजिए इस दरवाजे पे दाखिल होने से पहले जो हरम का दरवाज़ा ये है बाबे इमाम अली रज़ा, जिसको बाबे कबीर बाबे साक़ा भी कहते हैं, और क्या कहा यह जाता है अच्छा नाम रखने की क्या वजह है, इस दरवाजे से जब बाहर दाखिल होंगे आप यानी बाहर निकलेंगे और चलते चले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में ईरान, ये उस सिंध में वाकई है दरवाज़ा जहाँ पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, इसी के ऊपर ये मीनारा है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा घड़ियाल घंटा जो है वो पोशीदा है लगा हुआ है। इसकी आवाज़ें कहा जाता है एक ज़माने में पूरे शहर में सुनाई दिया करती थी, और इराक का सबसे पुराना घंटा घर है। अच्छा बाबे कबीर एक ज़माने में कहा जाता था और अभी भी गालिबन कि जब सुबह होती है तो बाबे कबीर के सामने बहुत ज़्यादा रोशनी होती है खसूसी तौर पर, तो लोगों को पता चल जाता है कि तुलू आफ्ताब हो गया, किरने रोशनी की आपको नज़र आएंगी वहाँ पर, और जवाल के वक्त खसूसी तौर पर इसी बाब कबीर के करीब ओसे कज़ा के रंग जो है वो बिखरे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि जो है वो जहर का वक्त हो गया है। इसी तरह बाब कबीर के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा, ये देखिए ये दरवाज़ा बाब मुस्लिम बिन अकील है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वजह तस्मिया क्या है, अगर इस दरवाजे से आप बाहर दाखिल हों बाहर निकलें अंदर नहीं दाखिल हों बाहर निकलें और चलते चले जाएं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, कूफे में, उस जगह जहाँ पे मुस्लिम बिन अकील दाखिल हुए थे, जिस जगह से मुस्लिम बिन अकील कूफे में दाखिल हुए थे। तो ये भी बाब जो है हमें मुस्लिम बिन अकील का जो है वो की जो है वो हमें याद दिलाता है। इस बाब के आगे एक ज़माने में बाजार खयातीन था, खयातीन खयात यानी दर्जियों का बाजार, कि जहाँ पे अबा कबा जो है वो सी जाती थी, लेकिन अब तौसी और तामीर की वजह से वो बाजार जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे यानी ये जो आपने देखा बाबे मुस्लिम बिन अकील, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर शेप की जो जगह नज़र आ रही है, ये वाली ये आपको एरो नज़र आ रहा है, ये जो है मस्जिद खिजरा है। मस्जिद खिजरा जैसे कि नाम से जाहिर है ग्रीन, कहते हैं कि जिस औरत ने ये मस्जिद बनवाई थी उसका नाम खिजरा था, वो औरत इमरान बिन शाहीन की बहन थी। इमरान बिन शाहीन कौन, इसका तस्करा आगे आएगा। एक रिवायत ये भी मिलती है तारीख में कि एक शख्स आया था जिसने जब ये मस्जिद देखी तो इस मस्जिद के सहन में सब्जा उगाया, हिंद से आया था वो, हिंदुस्तान से, इंडिया से, जब सब्जा उगाया तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद खिजरा पड़ गया। ये तो तारीखी बैकग्राउंड था, लेकिन जो अहमियत इसको हासिल है वो ये कि आयतुल्ला खोई का दरस खारिज यहाँ हुआ करता था और वहाँ पे ये नमाज बाजमात पढ़ाया करते थे। आपके इंतकाल के बाद आयतुल्ला अली सिस्तानी ने जो है नमाज पढ़ाना शुरू की और अभी फ़िलहाल उनका दरस खारिज यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन किसी और मुज्तहिद का यहाँ पे दरस खारिज अभी भी जारी है। आयतुल्ला खोई को इसी मस्जिद के साथ मुत्तसिल हुजरा नंबर 31 में दफन किया गया है, जहाँ पे इनके बेटों की भी खबरें हैं। फिर इसी मस्जिद मस्जिद खिजरा से आप आगे जाएंगे तो सीधे हाथ में, अच्छा हम जो हैं ये याद रखिएगा, बाबे कबीर या मेन गेट या बाबे साहब से या बाबू सा से एंटर हो रहे हैं और अभी हम मौला की जरी पे नहीं जा रहे हैं। हमने मौला की जरी देख ली और वहाँ ज़ियारत पढ़ ली, सलाम और जो दुआएं वगैरह अज़कार पढ़ ली वो ख़त्म कर लिए। अब आप चाहते हैं कि मैं ज़रा हरम को घूमूं, तो जाहिर सी बात है जब पहली मरतबा जाएंगे तो आपको ये नहीं करना है कि मस्जिद खिजरा जा रहे हैं और अबवाब देख रहे हैं, नहीं, पहले तो आपको ज़ियारत करनी है, फिर दोबारा आप वापस आएँ इसी मेन गेट पर बाबे कबीर पर, फिर आप जो है बाब मुस्लिम बिन अकील पर, फिर जो है मस्जिद खिजरा पर, और फिर थोड़ा सा अच्छा हमें एंटी क्लॉक वाइज घूमना है। मौला का जो हरम है अगर फ़र्ज़ कर लें वो इस तरह चलिए तो मुस्ततील है, ये चौकोर है, तो आप बाबे कबीर से दाखिल हुए तो एंटी क्लॉक वाइज यानी आपको यूं घूमना है। तो यहाँ पे ये जब चक्कर कंप्लीट करेंगे और दोबारा बाबे कबीर पे आएंगे तो इंशाल्लाह एक दुनिया आप देख चुके होंगे। तो ये चौथे नंबर पर हुसैनिया गरबिया है, एक ज़माने में यहाँ पर मदरसा हुआ करता था इसलिए इसको मदरसा गरबिया भी कहा जाता है। यहाँ पर तुल्लाब इकराम आया करते थे, यहाँ पे बैठा करते थे, सोया करते थे, खाया करते थे, यहाँ पे अपनी चीज़ें रखा करते थे, लेकिन अब इसको हुसैनिया में तब्दील कर दिया है। हुसैनिया अरबी में उसी जगह को कहते हैं जिस जगह को हम लोग उर्दू में इमाम बारगाह कहते हैं, सऊदी अरब में हो, कुवैत में हो, बहरीन वगैरह में आप इमाम बारगाह नहीं बल्कि इमाम बारगाह उर्दू का लफ्ज़ है, तो वहाँ पर हुसैनिया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पाँचवें नंबर पर गेट, देखिए चार मेन गेट हैं बल्कि पाँच गेट आप समझ लीजिए, तो जो जिस गेट से आप दाखिल हो रहे हैं उस गेट के सीधे हाथ पे ये गेट है, ये देखिए ये गेट है जहाँ से आप दाखिल हुए, ये है आपका मेन गेट, आपने जो है बाबे मुस्लिम बिन अकील देख लिया, आपने जो है इसके बाद मस्जिद खिजरा देख ली, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आप आ गए हाँ हुसैनिया गरबिया, ये जो गेट है ये वाला ये है बाबे तूसी, शेख तूसी जो आए थे तो वो इस गेट के बाहर एक मस्जिद है, इसका तस्करा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे हम, मस्जिद तूसी वहाँ पे उन्होंने अपना मस्कन बनाया था, यानी वहाँ वो घर था उनका, उन्होंने फिर वसीयत की थी कि मुझे यहीं पे दफनाया जाए, तो फिर वहीं पे दफन हुए, वहाँ पे अभी उनकी कब्र मुबारक है। तो इस गेट को चूँकि वो उनकी मस्जिद या उनकी कब्र के करीब है इस गेट को हम कहते हैं बाबे तूसी, यही ये वही गेट है जिस गेट से निकल के आप वादी सलाम जाते हैं, 10 मिनट की वॉक पे आप वादी सलाम पहुँच जाएंगे, किसी को साथ ले आने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से, बहुत सीधा सीधा रास्ता है। तो ये बाबे तूसी है, बाबे तो शेख तूसी का इंशाल्लाह तस्करा हम आइंदा दस में करेंगे क्योंकि ये इतराफ़ हरम की ज़ियारत में शामिल होगा। अच्छा बाबे तूसी के बाद जो है ऐवान उलमा, ऐवान उलमा कहाँ है, देखिए ये जो आपका बाबे तूसी है इस बाबे तूसी से आप अंदर की तरफ जाएँ, कहाँ फ़र्ज़ कर लें मतलब आपने जो है अपनी डायरेक्शन मरकज मुताहर यानी जरी की तरफ रखी है, तो जरी से पहले जो कॉरिडोर आएगा उस कॉरिडोर पे जो मेहराब नुमा इमारत है उसको हम कहते हैं ऐवान उलमा। ये देखें, ये है ऐवान उलमा, ये वाला, ये ऐवान उलमा। और आपके उस तरफ जो है वो ऐवान तला यानी गोल्ड का ऐवान है। यूँ समझ लीजिए, जब आप गोल्ड के ऐवान पे खड़े होंगे पुश्त करके तो उल्टे हाथ पे ये पड़ेगा। ये जो ऐवान उलमा है, वैसे तो नाम से जाहिर है कि यहाँ पर उलमा मदफून है, यहाँ पे 12 उलमा मदफून है, लेकिन दो बहुत मशहूर हैं जिनका तस्करा खसूसी तौर पे जो है करना चाहिए। एक हैं शेख मुल्ला मोहम्मद निराखी और इनके साहबजादे शेख मुल्ला अहमद निराखी। ये मोहम्मद निराखी के हवाले थोड़ी सी गुफ्तगू ताकि इनकी मारिफत में इजाफा हो, जब आप वहाँ खड़े हों और उनके बारे में सोचें तो इंशाल्लाह आपका ईमान हरारत ईमानी जो है वो बढ़ जाए। शेख मोहम्मद निराखी इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनके वालिद चपरासी थे बादशाह के, गुरबत में जो है इन्होंने सफ़र किया और ये पहुँचे उस ज़माने में इस्फहान। निराख गांव के रहने वाले थे, इस्फहान उस ज़माने में इल्म अमल का मरकज़ था, इल्म तहकीक का, और वहाँ पे पूरे 30 साल दर्स लिया। 30 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दर्स में गुजारे, लेकिन अगर हम फकत 30 साल कहें तो भी बड़ी बात है, लेकिन जो हैरत की बात है वो ये, इन 30 सालों में उन्होंने घर की कोई खबर नहीं ली, दोस्तों की कोई खबर नहीं ली, घर से दोस्तों से जो भी खतूत आते खोले बगैर अपने तकिए के नीचे रख लेते कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे घर की यासत आएगी, मैं पढ़ूंगा तो दोस्तों से मिलने का जी चाहेगा और फिर मेरा वापस जाने का जी चाहेगा, मेरा दिमाग सोचें मेरा जहन परागंदा हो जाएगा और मेरी तवज्जो बट जाएगी। अब हम देख लें किताब पढ़ते हुए मुताला करते हुए कितनी मरतबा मोबाइल टच करते हैं, किसी का मैसेज आया, किसी की कॉल आई, कोई पोस्ट आई, करते हैं कितनी मरतबा, पढ़ते हुए हम कितनी मरतबा कर लेते हैं, बच्चों की भी आदत है, बड़ों की भी आदत है। मुस्तकिल जो है वो, अभी हम पढ़ रहे थे कि ताइवान का जो रिचेस्ट पर्सन है वो मर गया, मरना इतनी बड़ी खबर नहीं है, क्यों मर गया, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था और सीढ़ी से फिसल के गिर गया, मर गया। बताया इतने बड़े बड़े उखला, मतलब उखला ही कहेंगे, सबसे बड़ा बिजनेसमैन रिचेस्ट आदमी ताइवान का, वो मोबाइल यूज़ करते हुए सीढ़ी से फिसल के गिर गया। तो मुल्ला मोहम्मद निराखी के पास खड़े होकर ये अहद कर लें कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ नहीं करेंगे। देखिए ये भी बहुत कुछ लेके आएंगे आप नजफ से, बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त तो माशाल्लाह सभी जो है वो मोबाइलीमिया डिजीज़ का शिकार है कि किसी का भी जो है वो गुजारा नहीं होता मोबाइल के बगैर। चले ठीक है इस्तेमाल करें, लेकिन ये कि एक्सेसिव यूज़ या गैर अखलाकी यूज़ तो खैर है ही गलत, लेकिन एक्सेसिव यूज़ आपका जो है वो वक्त ज़ाया करता है। तो शेख मोहम्मद निराखी कोई ख़त नहीं पढ़ते थे कि मेरी तवज्जो इस इल्म की तरफ है। अब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बल्कि कत्ल किया कर दिया गया उनके वालिद को। अब उनको जारी बात है वो अंदर का मजमून तो नहीं पता, ख़त आया उन तक के नीचे रख दिया। 2-3 दिन बाद अपने उस्ताद मुल्ला मोहम्मद इस्माइल के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब वो कह रहे थे, सोच रहे थे मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं, इस लड़के को कैसे बताऊं कि इसके बाप मर गया है, उसको सदमा ना हो जाए, तो शौक ना लग जाए। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द सेहत याबी देगा, आप दर्स पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे अब्बू ज़ख्मी है शदीद। कहेंगे नहीं इंशाअल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूँगा, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत याबी देगा, आप दर्स पढ़ाएं। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया, उनको कत्ल कर दिया गया है। कहने इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा, आप दर्स पढ़ाएं। फिर मुल्ला मोहम्मद इस्माइल ने उनको डांट के कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ फौरन अपने घर जाओ। तो इस डर से कहीं मेरे उस्ताद पढ़ाना बंद ना कर दे, वो अपने घर गए। फकत 3 दिन रहे, 3 दिन के बाद स्वयं करने के बाद फौरन वापस आ गए। अच्छा ऐसी मिसालें बहुत मिलती हैं, खुद खुमैनी साहब के बारे में जैसे आपने सुना होगा, एक दफ़ा दर्स दे रहे थे, एक पर्ची आई, उन्होंने जो है वो रख दी और दर्स कंटिन्यू किया। लोगों ने कहा कि ये कौन सा ऐसा सवाल था जिसका जवाब खुमैनी साहब को नहीं आता था। दर्स के बाद पता चला कि उनके बेटे की शहादत की खबर आई थी कि जिसके लिए उन्होंने दर्स भी रोकना गवारा नहीं किया। और एक मुश्तहिदा, मुझे नाम नहीं आता रहा, उनके बारे में मिलता है, उनके बेटे का इंतकाल हुआ तो उन्होंने जो है वो दूसरे ही दिन से दर्स लेना शुरू कर दिया जो जारी था, उन्होंने मौतल मौकूफ नहीं किया। तो मुल्ला अहमद निराकी जो है उन्होंने 30 साल में दर्स हासिल किया। फिर इस्फहान से जो है वो काशान आए और फिर वहाँ पर ऐसा डेरा जमाया कि खुद उलमा जो है इस तरफ आई, जामियों से आदात अखलाकियात पर बेहतरीन किताब जो है वो मुल्ला अहमद निराखी ने लिखी है। इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, क्या بتلایا جائے کہ کچھ مثالیں بھی عجیب سی لگتی ہیں اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ چراغ کے لیے پیسے نہیں تھے, چراغ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو بیت الخلاء کے چراغ سے استفادہ کرتے تھے. یعنی بیت الخلاء میں جا کے مدرسے کے یا کسی اور کے عوام کے وہ جا کے پڑھا کرتے تھے, کوئی آتا تھا تو فوراً شرما کے نکل جایا کرتے تھے. تو آپ دائیں بدبودار جگہ پہ ایک آدمی روزانہ اسٹڈی, ہمارے اتنا تو کرتے ہوں گے 15 منٹ اسٹڈی کی اور سر درد لے کے بیٹھ گئے, بہت درد ہو گیا, ٹی وی دیکھ لیں یا گھوم بھی پھر کے آ جائیں. تو ہمارے شیخ مرزا انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے, ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو آپ کے تو ماشاء اللہ جو ہے وہ 36 واٹ کی 50 واٹ کی LED جو ہے وہ ٹیوب دستیاب ہے, اور دن میں بھی آپ جلا کے پڑھتے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے آپ کے گھر میں, کھانا تیار ہے, ہر چیز, کیا چیز نہیں ہے. تو اور پھر ان لوگوں کی کتابیں بھی جب انہوں نے لکھی تو مشہور ہوئی ہیں, معروف ہوئی ہیں, اور جو ہے لوگوں نے باقاعدہ جو ہے رجوع کیا اور اپنے آپ کو سدھارا ہے. اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا ایک بہترین اولاد پیدا کی, کیا تربیت کی. ملا احمد مراقی جو خود اپنے والد سے زیادہ مشہور ہوئے, یہ بھی بہت جسے کہتے ہیں کہ آگے گئے درس اخلاق میں. ان کی کتاب ہے معراج السعادہ, بہترین کتاب ہے. اتفاق سے جب ہم نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی تو اس زمانے میں ایک کورس ہوا کرتا تھا NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, آج بھی شاید ہوگا. یہ ایک ایڈوانس سائیکالوجی ہے جو اس وقت امریکہ میں وجود میں آئی ہے, انڈر پروسیس ہے, پروسیجر ہے, مطلب ابھی فلی طور پہ ڈیولپ نہیں ہوا یہ علم. تو رچرڈ بینڈلر اس کا وہ تھا فاؤنڈر. تو پازیٹیو سائیکالوجی کے ایک عام ایوریج آدمی جو ہے اپنے آپ کو امپروو کر کے ایک بہتر کانفیڈنٹ سکسیزفل آدمی کیسے بن سکتا ہے. اس دوران اتفاق سے ہم نے یہ معراج السعادہ بھی پڑھنی شروع کی. یقین کریں 250 پیج 1000 صفحے مشتمل کتاب ہے, انتہائی مشکل کتاب ہے. اس کا جو اردو ترجمہ ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ عربی ہے یا عربی ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک گھنٹے بعد سر میں درد ہو جاتا ہے. انتہائی مشکل, شاید کتاب ہی مشکل ہے لیکن جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے بھی مشکل کیا ہے. بہرحال لیکن جن کو شوق ہے اخلاقیات میں آگے جانے کا اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یقین کریں 250 صفحے اگر اس کے کوئی پڑھ لے تو وہ اپنا ماہر نفسیات بن جائے گا. ہم نے جو تجزیہ نفس یا تزکیہ نفس کے ہمارے جو دروس دیے تھے آپ کو وہ اسی کتاب پر مبنی تھے, مشتمل تھے, 1000 کتاب پر مشتمل کتابیں. بالکل بیسس آف سائیکالوجی یا بیسس آف سنس یا گناہ کے بنیادی محرکات کیا ہوتے ہیں, کہ ہم کیوں کرتے ہیں گناہ, کیا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, کیا کیمسٹری امبیلنس ہوتی ہے باڈی میں, کسی وجہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے. تو وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بی پی کمزوری ہے, کمزوری کیا ہے, کیلشیم کی کمی, ٹھیک ہے آپ نے کیلشیم کھا لیا, کمزوری ہے, کمزوری کی ہیموگلوبن کی کمی, ٹھیک ہے آپ نے آئرن کھا لیا, تو جس چیز کی کمی ہے وہ آپ نے وہ لے لی. تو جب آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو کس چیز کی کمی ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ جاتے ہیں بھائی ہاں بھائی میری جو ہے وہ عقل کم ہو گئی ہے, میری جو ہے وہ خواہشات بڑھ گئی ہیں, یا فلاں چیز جو ہے اس میں امبیلنس. تو یہ تمام چیزیں ان شاء اللہ اگر آپ پڑھیں, سکون سے پڑھیں, ضروری ہے کہ 1000 پیج آپ ایک فرصت میں پڑھ ڈالیں, ایک صفحہ دو صفحہ روزانہ کر کے پڑھیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آیت اللہ بہجت نے ایک شخص کو ریکمینڈ کیا تھا, وہ آیا تھا آیت اللہ بہجت کے پاس, کہنے لگا کہ مجھے عرفان, علم عرفان سیکھنا ہے. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ پہلے تم معراج السعادہ پڑھ کے آؤ اور اس پہ عمل کر کے آؤ. تو وہ شخص گیا, اس نے وہ کتاب پڑھی 1 سال. آپ کہیں گے بھی مہینے 2 مہینے بھی لگا سکتا تھا صبح سے لے کے شام تک, نہیں اس نے عمل بھی تو کیا, ہم جیسا تھوڑی تھا. 1 سال پڑھا, اس پہ عمل کیا, پھر آیا آیت اللہ بہجت کے پاس, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ, اور کہتے ہیں کہ معراج السعادہ سمجھ لیں جامع السعادات کی کنٹینویشن ہے, اپنے والد کے علم کو انہوں نے تکمیل تک پہنچایا ہے, اور یہی سبب غالباً کہ انہوں نے اس کو معراج السعادہ کا نام دیا. اچھا معراج السعادہ, اچھا اس میں ایک بات, اچھا واقعہ اگر شاید آپ پہلے بیان کر چکے لیکن اگر بیان کرتے دوبارہ تو بہت مناسب ہوگا. اچھا علم اخلاق کے ماہر تھے, حسن اخلاق, عرفانیات, توازو, انکساری, زہد, ساری باتیں ان تمام صفات سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے. تو ایک شخص درویش آیا ان کے پاس. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا علم سیکھنے استاد کے پاس جاتے تھے اور استاد کے گھر ڈیرہ جما لیتے تھے. آج کل تو خیر یہ بڑا مشکل ہے, آپ اپنے چچا ماموں کے گھر جا کے 1-2 دن نہیں رہ سکتے, تو اس کے گھر رہتے تھے. کیوں؟ وہ نوٹ کرتے تھے, یہ ہمارا استاد کب اٹھتا ہے, کب سوتا ہے. یہ تھوڑی کہ آپ نے نماز شب پہ لیکچر دیا اور مزے سے جو ہے وہ نماز شب غائب کر کے بیٹھے ہیں, کسی کو کیا پتا. وہ دیکھتے تھے ہمارا استاد کیا کیا کر رہا ہے, کس وقت کیا اسکار کر رہا ہے, لوگوں سے ملتا. تو جب وہ گیا ان کو دیکھا تو دو, اچھا وہ آیا تھا, آنے کا مطلب ہے مہینے 2 مہینے اور ہو سکتا ہے سال 2 سال رہے گا. وہ 2-3 دن بعد ہی اس نے جو ہے اپنا جو ہے بورا بستر لپٹا کے میں تو جا رہا ہوں. तो मुल्ला अहमद निराकी ने कहा तुम मुझसे कुछ सीखने आए थे, अभी तक तो हमारी क्लासें नहीं शुरू हुई, तुमने मुझसे कुछ सीखा ही नहीं और तुम जा रहे हो। कहेंगे मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी किताब पढ़ के मुझे ये लगा कि आप बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग होंगे, आप तो कुछ भी नहीं है। कहें क्यों? कहें इतने ठाट बाट। अच्छा, इनके अब्बू ने बड़ी कसम कुर्सी के दिन देखे थे, लेकिन बहरहाल होता है बाज़ औक़ात आप दरख्त लगाते हैं और फल जो है वो बच्चे खा रहे होते हैं और थैंक यू भी नहीं कह रहे होते बाज़ औक़ात। तो इनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी, बड़ी शाहाना ठाट बाट थे, बिल्कुल बादशाह जैसे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या इखलाक पे अमल करेंगे, आप के अंदर क्या जहद होगा, नौकर चाकर खाना पीना लजीज गजाएं और नरम बिस्तर और मवेशी और ज़रात और प्रॉपर्टी महल जैसा घर आपका। तो वो शर्मिंदा हुई, कहना तुम बात सही कर रहे हो, कहना आपके अंदर तो जहद हो ही नहीं सकता। जहद तो ये कि आदमी दुनिया की मोहब्बत निकाल के भेज दे और आप दुनिया को चिमटा के बैठे हुए अपने आप से। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा शागिर्द बनना चाहिए, तुम मुझसे कुछ ना सीख सके, चलो ठीक है मैं तुमसे कुछ सीख लेता हूँ। अच्छा, उस जमाने में देखिए उलमा ऐसे हुआ करते थे, ये नहीं कि अपनी बात पे तुल जाए, नहीं नहीं उस्ताद नहीं मैं सही कह रहा हूँ तुम गलत कह रहे हो। मुझे याद नहीं आ रहा आलिमुद्दीन का कि अलवन ईरान की बात है कि वो एक जगह दरस खिलाफ चला करता था, वो दर्स दिया करते थे। एक वक्त एक दिन जब वो आए तो उनके स्टूडेंट नहीं आए थे, तो वो सामने जो दर्स हो रहा था वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ भी दरस खिलाफ चल रहा था वो बैठ गए। अच्छा, इनके जब स्टूडेंट आने लगे एक एक करके तो वो खामोशी से अपने पास आके बिठा लिया, सुनो क्या कह रहे हैं, अब पूरा दर्स सुनवा दिया उनको। उसके बाद जो है वो उनकी जो तलबा जो जमा हो गए थे, उन्होंने कहा कि उस्ताद आपने दर्स लिया, आपने बल्कि खुद आप यहाँ आके बैठ गए और फिर हमें भी ये दर्स सुनवा दिया, पूरा आज क्लास आया होगी। कहेंगे आज से हम सब इनका दर्स लिया करेंगे, उस्ताद समेत अपने शागिर्दों को लेके, कि नहीं मेरा इल्म क्या, मेरी नॉलेज क्या, या हमें इनका। तो देखिए मुल्ला अहमद निराकी, देखिए ये सब तमाम बातें ना आप ऐवान उलमा में खड़े होकर सोचिएगा और बड़ा लुत्फ आएगा कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ कि जहाँ पर मुल्ला अहमद निराकी बनते दफन है, ये वो जगह है कि जिस ने मेरा जो सहादा लिखी, ये वो जगह है कि जिसने जो है जहद में कमान हासिल किया। अच्छा, उस दरवेश ने कहा कि मैं तो नहीं समझता कि मैं आपसे कुछ सीखूँ। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तस्लीम करता हूँ और मैं नाकाम हो गया तुम्हें कुछ सिखाने में, मैं तुमसे कुछ सीखता हूँ, तुम मुझे जहद सिखाओ, जहद क्या होता है, जहद कैसे हासिल किया जाता है। तो उसने कहा कैसे सीखें, कहेंगे मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं कहें मेरा तो कोई घर नहीं, कहना ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं रुकूंगा रहूँगा। सलमान फारसी का भी तो घर नहीं था ना, कहते हैं वो गवर्नरी मदाइन जब थे तब भी दरख्तों के नीचे सोया करते थे। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, जहाँ तुम होगे जैसे तुम खाओगे। उसने कहा चलो ठीक है सही है मेरे साथ चलो। अब वो अकड़ गया कि अब मैं जो हूँ इसका उस्ताद। वो चलने लगे, चंद कदम चले होंगे, थोड़ी दूर गए होंगे, एकदम से उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया। कहने क्या हुआ, कहने मैं अपना कशकोल भूल गया आपके घर। कशकोल भूल गए, कोई बात नहीं। कहने नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत अहम। अच्छा, जब ये मुल्ला अहमद निराकी अपने घर से निकल रहे थे और जब इससे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो बस मुड़ के नहीं देखा अपने घर को। अच्छा, दरवेश ने कहा कि ये ताला तो आप लगा दें। कहने ताला क्या लगाना, जब छोड़ दिया सो छोड़ दिया, जोर जैसे ऐसी तो सीखूंगा मैं। नहीं, अपने नौकर चाकर को तो बता दें आप कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। नहीं, मैंने छोड़ दिए नौकर चाकर। नहीं नहीं, आप जो है वो घर वालों को कम से कम बता दें कि आप कहानी नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे जहद इख्तियार करना है ना। तुम खुद कह रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें लेके बैठा हूँ, मुझे कैसे जहद उसी वक्त आएगा जब मैं छोड़ूंगा। अच्छा, अब ये वहाँ पहुँचे कशकोल, वो भूल गया। कह लेंगे मेरा कशकोल रह गया, वो इतना परेशान कैसे जान निकले आ रहे। कहें कशकोल ही तो है, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़, नहीं मैं उस कशकोल के बगैर नहीं रह सकता। कहें मैं इतनी बड़ी जायदाद छोड़ के आया हूँ और उसके बगैर रहने के लिए तैयार हूँ, और तू एक कशकोल के बगैर नहीं रह सकता। जहद तुझ में है या मुझ में है? तो इस वाकई के बाद अगर मौला के कॉल सुना दिया जाए तो बिल्कुल बरमहल होगा। कोई अहम बात ऐसी नहीं जो मौला ने हमारे आइम्मा ने ना की हो। मौला कहते हैं कि जहद ये नहीं कि तुम चीजों के मालिक ना बनो, जहद ये है कि चीजें तुम्हारी मालिक ना बनो। पैसा जब जेब में हो तो इंसान उसका आका होता है, और जब पैसा दिमाग में हो तो इंसान गुलाम बन जाता है। तो पैसे को जेब में रखें, जिसका जो मुकाम है, जब भी आप इसको अपने जहन पे सवार करेंगे और इसको अपना जरिया जैसे शान बनाएंगे तो आप जो है वो सवाल का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, ये एक अहम बात, हमारे आइम्मा पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पॉलिटिकली सियासी तौर पे या माशरती तौर पे लोगों की फलाह बहबूद या सियासी हुकूमत के हवाले से कोई भाग दौड़ नहीं की। बस मौला अली की हमें भाग दौड़ नज़र आती है, 4.5 साल खिलाफत थी, वो भी लोगों ने बैत की। बाकी आइम्मा पे नाउज़ बिल्लाह अग़यार और कुछ बाज अहबाब भी मुशव्वश होते हैं कि अमली सियासत में क्यों नहीं हिस्सा लिया। देखिए, अमली सियासत का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई ओहदा दिया जाए, आप गवर्नर बने, आप MNA MPA बनाया जाए, फिर आपको जो है वो सियासी ओहदा। ये भी होता है कि UNO का सेक्रेटरी जो है वो अपने कदमों पे चलकर आपके पास आए, आप असिस्तानी के पास आया था ना बांकी बोल, तो लोग लाइन लगा के खड़े हों आपसे मिलने के लिए। तो मुल्ला अहमद निराखी बहरहाल आलिम भी थे और एक रोबो दबदबे वाले भी थे, एक शान वाले भी थे। तो काशान में एक जालिम गवर्नर अपॉइंट हुआ, लोगों ने कंप्लेन की मुल्ला अहमद नराकी के पास जाके, उन्होंने कहा कि आज से तुम माजूल। अच्छा, ये थे भी इतने माशाल्लाह रोब दबदबे वाले, वो वाकई माजूल हो गया। माजूल मतलब अब उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, उसके नौकर चाकर नहीं सुन रहे, उसकी इंतजामिया नहीं सुन रही, जिसे कहते हैं हुकूमत, ये रिट नहीं है, रिट नहीं है, फला जगह तंजीम, फला जगह ये गुरु, फला जगह ये, हुकूमत की कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो वो गवर्नर बेचारा बैठे बिठाए मौजूल हो गया। क्यों? मुल्ला अहमद निराखी कहने पर उन्होंने जाके ऐलान कर दिया कोई इसकी बात नहीं मानेगा। वो इतना उनका बुलंद पाया मुकाम और इतनी शख्सियत थी, जब बादशाह को पता चला कि उसने, बादशाह ने बुला लिया मुल्ला अहमद निराखी को अपने दरबार तक तलब कर लिया कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे भेजे हुए गवर्नर को खुद अपनी तरफ से मौजूल कर दिया। अच्छा, अब वो बादशाह तो जाहिर सी बात है अभी उसकी टक्कर नहीं ले सकते थे, उसको तो उन्होंने कह दिया लोगों के सामने गवर्नर था काशान का, इसको मौजूल करो। अब उनके दिल में देखिए कैसे 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 मासूम उलवा जिसे कहते हैं, अगर हम इनकी आदतें हम ना अपना लें तो हम कहाँ पहुँच जाएँ। तो उन्होंने देखा कि अब ये कुछ करने वाला है, उसी वक्त उन्होंने हाथ अपने बुलंद किए और आस्तीनें चढ़ाई, ए अल्लाह, इस शख्स ने एक जालिम हुक्मरान हमारे इलाके में जो मुसल्लत किया था हम पर, मैंने उसको माजूल कर दिया, अब ये मुझ पर नाराज़ हो रहा है, मुझे सज़ा देना चाहता है। और वो कुछ कहना ही चाहते थे, बादशाह उनके घर पे दरवाजे उसके उनके कदमों पे गिर पड़ा कि खुदारा बस कीजिए, आप जिस तरह का गवर्नर कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, खुदारा मेरे लिए बद्दुआ मत कीजिएगा। तो अगर उलमा इस तरह के हों, हमारे इरफान रखने वाले, अखलाक रखने वाले, तो बादशाह जिसे कहते हैं बंदा खुदा, कुछ जिस तरह अल्लामा इली ने मुसलमान कर दिया, हालांकि जो तैमूर लंग था वो मुसलमान हो गया, तो अगर इस तरह की हो तो ये सियासत नहीं होती जो सियासत चल रही होती है। सियासत के लिए ज़रूरी है कि आप बादशाह बने, सियासत के लिए ज़रूरी है आप गवर्नर बने, बगैर गवर्नर या बगैर बादशाह के। हमारे आइम्मा ने इसी तरह हुकूमत की है और असल हुकूमत जिस्मों पे नहीं दिलों पे हुआ करती है। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले अच्छा, ये हमारा तो इरादा था कि ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा, ये शायद वक्त ख़त्म हो गया, 6:30 हरम जो है वो आधे से आधा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चलिए इसको मस्जिद इमरान बिन शाहिन में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी जो है वो अगली दफ़ा आपके सामने पेश करेंगे। मस्जिद इमरान बिन शाहिन जैसे कि नाम से जाहिर है, अगर आप इसको जैसे मैंने कहा कि बाबे कबीर पर दाखिल होने के बाद आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है, ठीक है, तो ये 7वें नंबर पर जो है वो मस्जिद इमरान बिन शाहीन है। अच्छा, मस्जिद बिन इमरान बिन शाहीन के बारे में सुन लीजिए कि ये एक मुतमम्मल शख्स था और उस ज़माने के बादशाह अज़दुद्दौला, उस ज़माने के बादशाह था और उसने बहुत ज़्यादा तामीरात में हिस्सा लिया है मौला के हरम में। तो ये साहिबी हैसियत आदमी था और इंतज़ामिया में था, फ़ौज में था, तो उसने एक दफ़ा बगावत की या नाफरमानी की बात, और ऐसी नाफरमानी की कि बादशाह ने इसको जो है वो पकड़ने का हुक्म दिया और इसकी मौत यकीनी थी। अब ये भाग के मौला के पास आ गया कि मौला जो है वो मुझे बचा लेंगे। तो मौला के पास आया, 2-3 दिन रहा, एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि मौला ख्वाब में है। अब मौला ने कहा देखो कल अज़दुद्दौला आ रहा है, फलां दरवाजे से आएगा और ज़री के पास फलां जगह खड़ा हो जाएगा और ये मुझसे हाजत तलब करेगा, मौला मेरी मदद कीजिए इमरान बिन शाहिन को ढूंढने में। तो उसका असल नाम है फना खुसरो, तुम पीछे से आके चुपके से उसको आवाज़ देना, ए फना खुसरो, अगर तुझे इमरान बिन शाहिन मिल गया तो इसके बदले में क्या देगा। अब धर्म आपके निक नेम, बचपन के नेम, या किसी चिड़ से जो स्कूल में थी उससे पुकारा जाए और फौरन कहेंगे ये कौन है, तो उसने कहा कि यार ये कौन है, उनका ये मौला ही की तरफ से आवाज़ आ रही है या मौला ही ने किसी को हुक्म दिया है और ये मेरा काम होने वाला है। और वो भी वहाँ पे कप कप आते, उसने कहा कि अच्छा मौला ने ख्वाब में आगे क्या कहा इमरान बिन शाहिन के, तुम कहना पीछे से ए फना खुसरो, अगर तुझे इमरान बिन शाहिन मिल गया तो तू क्या करेगा, इससे पहले कि वो जवाब दे तू खुद जवाब देना, क्या उसको माफ कर देगा, तो वो फौरन कहेगा हाँ हाँ माफ कर दो। अच्छा उसकी घिग्गी बन गई ये एकदम से, मौला से मैंने कहा, मौला की तरफ से जवाब आ गया और वो कह भी रहे हैं क्या देगा और फिर खुद कह रहे हैं कि इतना दोगे, मतलब दुकानदार कहते हैं ना भाई बाजी आप कितना दोगे, नहीं 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 बाजी आप इतना दोगे, इतना ही दूंगा, तो माफ कर देगा, तो उसने कहा हाँ माफ कर दूंगा, फौरन वो उसके सामने आगे खड़ा हो गया। अब बादशाह कुछ कह ही नहीं सकता। फिर इमरान बिन शाहिन ने बादशाह को पूरा वाक्य सुनाया कि मैंने आज ही मौला को देखा और उन्होंने पूरा बताया कि तुम कहाँ से आओगे, कहाँ खड़े होगे और क्या कहोगे और फिर मुझे क्या कहना। उसी वक्त उसने बादशाही खिलत जो पहना करते थे दरबारी वो उतारी, बादशाह के हाथ में रखी, कहा कहाँ जा रहे हो, कहना मैं मस्जिद बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद मस्जिद बिन इमरान बिन शाहिन मशहूर हो गई। इसी की बहन के बारे में कहा जाता है कि इसने मस्जिद खिजरा बनवाई। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब परहेजगार नहीं था, लेकिन जिसे कहते हैं कि मौला के कदमों में आगे पड़ गया कि मौला जो है मुझे आप बचा लें, और मौला ने बचा लिया। ये जो मौला पे इल्ज़ाम है कि मौला ने फला जंग में इतने मारे, जंग में इतने मारे, इतने कबीले वालों को कत्ल किया, हर कबीले वाले को, अरे मौला ने मारे तो मौला ने बचाए भी तो कितने। तो एक आया था ना गुलाम भाग देवे कि मौला लोग आ रहे मेरे पीछे और मैं यहाँ जा रहा हूँ आप बताइएगा मत, मौला फ़ौरन बैठ गए। तो आने वाले ने लोगों ने कहा कि उस शख्स को देखा, कहने जब से मैं बैठा हुआ हूँ मैंने तो नहीं देखा। तो बच गया। इस तरह कितनी सजाओं को जो है सजाओं का ऐलान किया गया, फांसी का, कत्ल का, संसारी का, और मौला ने ऐन वक्त पे इंटरवीन किया, इंटरसेप्ट किया कि ये गलत है और इस फैसले को वापस लो, अभी हम कूफा जाएंगे तो वहाँ बतलाएंगे, वहाँ भी एक औरत पे तोहमत लगी तो मौला ने उसको किस तरह बचाया। तो मौला अगर कत्ल कर देते तो सात पुश्तों को देख के कत्ल किया करते थे, मौला अगर बचाते थे तो वो आपका खुलूस देकर आपको बचा लिया करते थे। इसके बाद मकतबा हैदरिया है, मेरे ख्याल में जो आगे तफसील है वो भी वक्त तलब है, इंशाल्लाह अगले दर्स में उसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा और सुना उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, हम सब को इमाम अली की ज़री की ज़्यारत करने की तौफीक अदा फरमाए, तमाम ज़्यारत मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमाए, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अदा फरमाए, क़यामत में उनकी शफाअत से बहरामंद फरमाए, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें उनके अनसार व आमान में शामिल फरमाए। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين
الجنة يا مولا الجنة يا صاحب السماء